नमस्कार, आज हम जरा बात करते हैं संस्कार के बारे में। हमारे पास ये जो कुछ स्रोत हैं, वो हिंदू जीवन पद्धति में इनके महत्व और अलग अलग प्रकारों पर रोशनी डालते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये स्रोत असल में संस्कार को एक तरह से क्या कहते हैं, आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक उपचार जैसा बताते हैं।
अच्छा, उपचार जैसा।
हाँ, जिससे व्यक्ति सभ्य शालीन बनता है, विवेकशील बनता है। एक तरह से ये व्यक्ति की जो सूक्ष्म शक्तियां है ना, उनको जगाने की प्रक्रिया है। और वो श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, जन्मना जायते शूद्र।
हाँ हाँ, सुना है।
संस्कारा द्विज उच्चते, तो मतलब जन्म से तो शायद सब एक जैसे हैं, पर ये संस्कार ही हैं जो व्यक्ति को परिष्कृत या द्विज मतलब दोबारा जन्मा हुआ या सुसंस्कृत बनाते हैं।
अच्छा, तो जैसे आसान शब्दों में कहें तो।
बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे कोई अनगढ़ पत्थर हो, उसे तराश कर एक पूजनीय मूर्ति बना देते हैं।
वाह, ये बढ़िया उदाहरण है, पत्थर से मूर्ति।
हाँ, तो वैसे ही संस्कार मनुष्य के अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो दिव्यत्व है, उसको विकसित करते हैं, निखारते हैं।
समझ गए। तो पारंपरिक रूप से तो वो 16 संस्कारों की बात होती है ना, षोडश संस्कार।
जी, 16।
लेकिन इन स्रोतों में ये भी जिक्र है कि शायद आज के समय में कुछ की उतनी जरूरत नहीं रही या कम हो गई है, और कुछ नए जैसे जन्मोत्सव या विवाहोत्सव, ये भी संस्कार जितने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।
हाँ बिल्कुल, समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, और ये स्रोत कुछ खास संस्कारों पर ध्यान दिलाते हैं जो जीवन के अहम पड़ावों से जुड़े हैं।
जैसे कि?
जैसे पुंसवन संस्कार, ये गर्भ के तीसरे महीने के आसपास किया जाता है।
अच्छा, जन्म से पहले?
हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भ में पल रहे शिशु का सही शारीरिक और मानसिक विकास। इसमें जो औषधियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे वट यानी बरगद की कोंपलें या पीपल गिलोय,
हाँ,
उनके सिर्फ औषधीय गुण नहीं प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं, जैसे वट से विशालता, पीपल से दिव्यता, गिलोय से आरोग्यता। ये कामनाएं हैं शिशु के लिए।
तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं, एक तरह से भावनात्मक और मानसिक तैयारी भी है बच्चे के आने से पहले की।
एकदम सही। फिर जन्म के बाद आता है नामकरण संस्कार।
हाँ, नाम रखना, इसका क्या महत्व बताया गया है?
बहुत गहरा। श्रोत कहते हैं यथा नाम तथा गुण।
अच्छा, जैसा नाम वैसा गुण, मतलब नाम का असर पड़ता है व्यक्तित्व पर।
बिल्कुल, इसलिए श्रोत जोर देते हैं कि नाम सार्थक हो, प्रेरणा देने वाला हो, शायद किसी महापुरुष के नाम पर या प्रकृति से जुड़ा हुआ। और एक बहुत जरूरी बात इसमें कही गई है कि अब बालक बालिका में भेद नहीं करना चाहिए। नाम रखते समय भी ये ध्यान रखना जरूरी है, 21वीं सदी नारी सदी है, ऐसा भी कहा गया है।
ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी। अच्छा, नामकरण के बाद फिर शायद खाने की बारी आती है, अन्न प्राशन का भी जिक्र है।
जी हाँ, अन्न प्राशन संस्कार, जब शिशु लगभग 6 महीने का हो जाता है और पहली बार अन्न चखता है।
हाँ,
और इसका सिद्धांत बहुत दिलचस्प है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। वो आपके विचार, आपकी चेतना को भी प्रभावित करता है। वो श्री कृष्ण वाला उदाहरण दिया इसमें।
कौन सा?
जब वो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग छोड़कर विदुर के घर सादा साग खाने गए थे।
हाँ हाँ, याद आया।
वो इसी बात का प्रतीक है कि अन्न की शुद्धि, उसकी सात्विकता कितनी जरूरी है। तो ये संस्कार हमें सिखाता है कि क्या खाना है, ये सिर्फ स्वाद का नहीं, एक नैतिक चुनाव भी है।
ये तो खाने जैसी रोजमर्रा की चीज को इतना गहरा अर्थ दिया गया है। अच्छा, भोजन के बाद फिर शिक्षा, विद्यारंभ संस्कार।
हाँ, विद्यारंभ लगभग 3 साल की उम्र में, जब बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू होती है। और यहाँ स्रोत शिक्षा और विद्या, इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं।
क्या अंतर है?
शिक्षा मतलब जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं, दुनियावी ज्ञान स्किल्स, और विद्या है आत्मिक ज्ञान, चरित्र का निर्माण, सही गलत की समझ।
अच्छा,
और ये स्रोत कहते हैं कि विद्या का आरंभ असल में घर से ही होता है। माता पिता पहले गुरु हैं, राम लक्ष्मण कृष्ण शिवाजी लवकुश, इन सबके उदाहरण दिए हैं कि कैसे गुरु और माता पिता के दिए संस्कार ही एक मजबूत चरित्र की नींव रखते हैं।
यानी किताबी ज्ञान से ज्यादा जोर चरित्र बनाने पर है, संस्कारों का असली मकसद यही है शायद।
हाँ, एक तरह से यही है।
अब उन संस्कारों की बात करते हैं जिन्हें स्रोत आज के समय में भी या शायद और ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे जन्मदिन मनाना।
जी, जन्म दिवसोत्सव। स्रोत इसे सिर्फ एक पार्टी या उत्सव की तरह नहीं देखते, ये एक मौका है आत्मनिरीक्षण का।
आत्मनिरीक्षण मतलब?
मतलब पीछे मुड़कर देखना कि पिछला साल कैसा गया, क्या गलतियां हुई, उनसे क्या सीखा, और आने वाले साल के लिए नए संकल्प लेना। ये दिन याद दिलाता है कि ये मानव जीवन कितना कीमती है। सुर दुर्लभ मानव तन पावा, इसे यूं ही नहीं गंवाना है।
ये तो बहुत गहरा नजरिया है जन्मदिन को देखने का, सिर्फ केक काटने से कहीं ज्यादा। और इसी तरह शादी की सालगिरह, विवाह उत्सव,
बिल्कुल, वो भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन है अपने दाम्पत्य जीवन के संकल्पों को, वादों को दोहराने का।
अच्छा,
पति पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का लेखा जोखा करने का, रिश्ते को और मजबूत बनाने का।
अच्छा,
जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना,
हाँ?
दोनों का साथ चलना जरूरी है।
हाँ?
वैसे ही पति पत्नी, और वो जो ग्रंथि बंधन होता है विवाह में,
हाँ?
उसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, फूल, अक्षत यानी चावल,
हाँ?
दुर्वा घास, हल्दी, पैसा,
हाँ हाँ?
उन सब का प्रतीकात्मक अर्थ है। पुष्प यानी स्नेह, अक्षत यानी अटूटता, दुर्वा यानी जीवन शक्ति, हल्दी यानी स्वास्थ्य, और पैसा यानी समृद्धि और जिम्मेदारियां।
हाँ।
ये सब मिलकर एक संतुलित खुशहाल जीवन का संदेश देते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें तो संस्कार सिर्फ कुछ रस्में या कर्मकांड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर व्यक्ति के चरित्र को संवारने, उसे सही दिशा देने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया जैसे लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी इनके काफी गहरे मायने हैं।
एकदम सही कहा आपने। ये व्यक्ति को कह सकते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए ज्यादा उपयोगी, ज्यादा बेहतर बनाने के तरीके हैं। ये जीवन को सार्थक बनाने के उपाय हैं।
बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सब। ये तो हुए वो औपचारिक संस्कार जिनकी बात इन स्रोतों में की गई है, पर आज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, भागदौड़ है, उसमें हम अनजाने में किन छोटी छोटी आदतों, विचारों या अपने आसपास के माहौल रूपी अदृश्य संस्कारों से खुद को और दूसरों को गढ़ रहे हैं।
ये बहुत अच्छा सवाल है,
शायद इस पर हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।